ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल नागरिकता आयन 2063 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक को पुनर्विचार के लिए प्रतिनिधि सभा में भेजा वापस। मंत्रिपरिषद बैठक ने इसी श्रावण एक गति से लागू होने के हिसाब से कर्मचारियों की नए वेतनमान और ग्रेड को किया स्वीकृत। एक ही चुनाव चिन्ह और घोषणा पत्र लेकर आगामी चुनाव में आगे बढ़ने की नेकपा माओवादी केन्द्र और नेपाल समाजवादी पार्टी के बीच हुई सहमति। आगामी मार्गशीर्ष चार गते होने जा रहे प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव को सफल बनाने के लिए आवश्यक सहयोग करने का संचार माध्यमों से प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने किया आग्रह। और इजिप्ट के चर्च में आग लगने से कम 41 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल नागरिकता आयन 2063 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए प्रतिनिधि सभा में वापस भेजा है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता सागर आचार्य द्वारा जारी बयान में उल्लिखित है। सरकार ने सभी राष्ट्र सेवक कर्मचारियों के नए वेतनमान और ग्रेड को स्वीकृत किया है। इसी श्रावण 26 गते को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने ये बात बताई। संचार मंत्री कार्की ने बताया कि सभी राष्ट्र सेवक कर्मचारियों को विक्रम संवत 2079 श्रावण 1 गते से लागू होने के हिसाब से नए वेतनमान और ग्रेड को स्वीकृत करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने किया है। इसी तरह विश्व बैंक से हरित उत्पादनशील और समावेशी विकास के लिए सहूलियत दर पर प्राप्त होने वाली 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 12 अरब 70 करोड़ रुपए की ऋण सहायता और जापान सरकार से प्राप्त होने वाली 2 अरब 13 करोड़ 64 लाख रुपए की अनुदान सहायता को स्वीकार करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने किया। मंत्रिपरिषद ने आर्थिक वर्ष 2079-80 के लिए विभिन्न मंत्रालयों में राजपत्रांकित श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए। साथ ही मंत्रिपरिषद ने सप्तकोशी नदी की बाढ़ से क्षतिग्रस्त इलाकों को आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित करने, राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता संचालन प्रथम संशोधन निर्देशिका 2079 को स्वीकृत करने, नसीम राइन के नाम से जारी की गई नागरिकता को रद्द करने लगायत कई अन्य निर्णय भी किए। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने विभिन्न विधेयकों को पारित किया। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मंत्री मोहम्मद इस्तियाक राइन द्वारा प्रस्तुत किए गए शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 और अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा द्वारा प्रस्तुत अर्थ समिति के प्रतिवेदन सहित बीमा विधेयक 2079 को बहुमत से पारित किया। अर्थमंत्री शर्मा ने कहा कि बीमा क्षेत्र की विकृतियों को हटाने के लिए सरकार तत्पर है। इसी तरह सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक 2076 के ऊपर उठाए गए सवालों के जवाब देते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि ऋण व्यवस्थापन और इसमें पारदर्शिता कायम करने के लिए विधेयक महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक श्रावण 31 गते मंगलवार सुबह 11 बजे के लिए बुलाई गई है। विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक गणपूरक संख्या 9 पहुंचने के कारण प्रतिनिधि सभा की आज की दूसरी बैठक स्थगित हो गई। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड और नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉ बाबूराम भट्टराई के बीच आगामी निर्वाचन के विषय में आज विचार विमर्श हुआ। डॉ भट्टराई के स्वकीय सचिव रोशन पोखरेल से मिली जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष द्वय प्रचंड और डॉ भट्टराई के बीच आगामी चुनाव में एक ही चुनाव चिन्ह और घोषणा पत्र लेकर आगे बढ़ने की सहमति हुई है। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल ने कहा कि आगामी निर्वाचन में गठबंधन करने से कांग्रेस को फायदा होगा। आज नेपाल प्रेस यूनियन चितवन द्वारा भरतपुर विमानस्थल में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने कहा कि संविधान के मुताबिक आगामी निर्वाचन में क्षमतावान महिलाओं को पार्टी अवसर देगी। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने कहा कि इस बार 33% महिलाओं को चुनाव में जिताने का प्रयत्न किया जाएगा। नातावाद कृपावाद से खुद को परे बताते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय संचार माध्यमों से आगामी मार्गशीर्ष 4 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव को सफल बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया है। आयोग ने निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित और मितव्ययी बनाने में आम संचार की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए तथ्यगत समाचार संप्रेषण करने को लेकर संबद्ध पक्ष का ध्यानाकर्षण कराया। आयोग ने आज आम संचार माध्यमों के संपादकों और प्रमुखों के साथ विचार विमर्श के दौरान ऐसा आग्रह किया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा कि अर्निको द्वारा चीन में बनाए गए चैत्यो ने नेपाल और चीन की मित्रता को प्रगाढ़ किया है। आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह में अर्निको के जीवन से संबंधित अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक का विमोचन करते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने ये बात कही। समारोह में पुस्तक के लेखक कृष्ण कुमार पांडे काजी ने विश्वास जताया कि कलाकार अर्निको के जीवन से संबंधित इस पुस्तक से भावी पीढ़ी और विश्व समुदाय तक अर्निको के योगदान संबंधी जानकारी संप्रेषण करने में मदद मिलेगी। लापता कर दिए गए व्यक्तियों संबंधी छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आईन को संशोधित करने के लिए बने विधेयक में परिमार्जन करने का सुझाव विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने दिया है। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि द्वंद के समय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हत्या, यौन हिंसा जैसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों को सख्ती के साथ दंडित करने के हिसाब से विधेयक में परिमार्जन किया जाना चाहिए। संसद में टेबल हो चुके विधेयक में पीड़ित पक्ष को न्याय की अनुभूति दिलाने के हिसाब से परिमार्जन करने की बात पर सहभागियों ने जोर दिया। नेपाल से गायब होकर अमेरिका पहुंच चुके पुरातात्विक महत्व वाली लकड़ी की कलात्मक साल भंजिका टुडाल और प्रस्तर से निर्मित शिव की मूर्ति नेपाल को वापस कर दिए गए हैं। बता दें कि ये टुंडाल काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 24E2 बहाल महाबिहार के मुख्य द्वार के ऊपर सन 1984 से सन 1985 के दरमियान चोरी हो गया था। पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये टुंडाल 13वीं या 14वीं सदी में बनाया गया था। इसी तरह अनुमानित 10वीं या 11वीं सदी में निर्मित शिव की मूर्ति काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 19 स्थित कंगेश्वरी मंदिर से सन 1995 में गायब हो गई थी। जानकारी के मुताबिक कास्ट कला की ये अनुपम वस्तुएं अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में उपहार के रूप में पहुंची थी। पुरातत्व विभाग के महानिदेशक दामोदर गौतम ने बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन में रही इस तरह की अन्य मूर्तियां भी वापस किए जाने की प्रक्रिया में हैं। प्रहरी समायोजन की मांग करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार आज से जनकपुर धाम के प्रदेश प्रमुख कार्यालय में धरने पर बैठी है। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सहित मंत्री परिषद के अन्य सदस्य भी धरने में शामिल है। ये जानकारी गृह तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद साह ने दी। आज देश भर में कोरोना के 455 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 302 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं, वहीं 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। बहरहाल देश भर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,435 हो गई है। डोलपा की त्रिपुरा सुंदरी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 स्थित ज्यू में एक्सकावेटर के भूस्खलन में दबने से चालक की मौत हो गई। इस हादसे में नेपालगंज उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 19 बांके राजा मोहनपुर निवासी करीब 32 वर्षीय सूरज वसाल की हुई मौत की जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऐसी रिपोर्ट है कि आज मिस्र के गीजा शहर में आग लगने के कारण एक चर्च नष्ट हो गया है और बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। बीबीसी की अरबी सेवा की रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना में 41 लोग मारे गए हैं जबकि 14 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सुरक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से लिखा कि इस घटना में कम से कम 35 लोग मरे हैं जबकि 45 लोग घायल हुए हैं। गीजा शहर के इम्बावा क्षेत्र में अबू सिफीन चर्च में घटना के वक्त बड़ी संख्या में लोग सामूहिक प्रार्थना कर रहे थे। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति ने घटना पर शोक जताया है और मरने वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल नागरिकता आयन 2063 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक को पुनर्विचार के लिए प्रतिनिधि सभा में भेजा वापस। मंत्रिपरिषद बैठक ने इसी श्रावण 1 गते से लागू होने के हिसाब से कर्मचारियों की नए वेतनमान और ग्रेड को किया स्वीकृत। एक ही चुनाव चिन्ह और घोषणा पत्र लेकर आगामी चुनाव में आगे बढ़ने की नेकपा माओवादी केन्द्र और नेपाल समाजवादी पार्टी के बीच हुई सहमति। आगामी मार्गशीर्ष 4 गते को होने जा रहे प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा चुनाव को सफल बनाने के लिए आवश्यक सहयोग करने का संचार माध्यमों से प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया ने किया आग्रह। और इजिप्ट के चर्च में आग लगने से कम 41 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।